हमने कोरोना वायरस को कैसे अपने घर से निकाला। रीम शराई की वाकफ़ ज़िंदगी यूके। तहदीसे रहमत खुदाए जुलजलाल। हम अभी साल 2020 के सिर्फ चौथे महीने में दाखिल हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि जनवरी से अब तक गोया हम 4 साल का अरसा गुजार चुके हैं। इस साल के आगाज़ से ही दुनिया मुतअद्दिद आफात और हौलनाक वाकयात से नबर्द आज़मा है, और सबसे बड़ी आफत तो अभी भी जारी है, यानी कोरोना वायरस, COVID-19 की आलमी वबा। जो बात मैं अगली सत्रों में बयान करने वाली हूँ वो मेरे लिए नहायत ज़ाती नौइयत रखती है, क्योंकि बदकिस्मती से ये वबा मेरे घर भी पहुँची। मुझे नहीं मालूम कि कैसे, ताहम जो मैं जानती हूँ वो ये है कि मेरे शौहर इब्राहिम इखलफ, जिनमें सबसे पहले बीमारी की इलामात ज़ाहिर होना शुरू हुई, वो दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेते। बाकी सारा वक्त वो अल्लाह ताला की खातिर मसरूफ़ अमल रहते हैं, जैसे एक हकीकी वाकफ़ ज़िंदगी का तरीक होता है। अगर वो अपने दफ्तर या जामिया जहाँ वो अरबी पढ़ाते हैं में ना हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह या किसी न किसी प्रोग्राम या मीटिंग में शमूलियत के लिए गाड़ी पर सफ़र में रहते हैं। कई साल से उनका मामूल है कि वो रोज़ाना 90 से 100 मील का सफ़र करते हैं। नतीजतन बाज़ औक़ात उनसे खाना भी छूट जाता है। उनके ये मामूलात उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर असरअंदाज हुए और इस तरह वो कोरोना वायरस का निशाना आसानी से बन गए। कोरोना वायरस चंद ही रोज़ में उनके फेफड़ों तक सराइत कर गया और फिर हमें इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाना पड़ा। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर एक रोज़ बाद ही उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड ICU में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जाने से कबल ही वो शदीद कमज़ोरी की वजह से साहिब फराश हो चुके थे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे तेज़ बुखार, कपकपाहट और हल्की खांसी की शिकायत थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ज़रूरी घरेलू कामकाज और जमाती खिदमत करने के काबिल थी। लेकिन जब मेरे शौहर को ICU में ले जाया गया तो मेरी टांगें मेरा बोझ उठाने के काबिल न रहीं। मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मैं समुंदर के ऐन वस्त में एक गर्दाब के अंदर हूँ और लहरें मुझे दाएं बाएं धकेल रही हैं, और ऐसा लगता था जैसे मैं किसी भी वक्त डूब जाऊँगी। मैं जिस्मानी तौर पर तो नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, और ज़हनी कमज़ोरी की वजह से मेरे सीने, दिल और फेफड़ों पर दबाव पड़ने लगा था। एक तरफ मेरे शौहर गोया मौत के किनारे पर थे और दूसरी तरफ मैं अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद थी। मेरे जहन में मुख्तलिफ वहम गर्दिश करने लगे। अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे अस्पताल जाना पड़ा तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? हमारी फैमिली यहाँ नहीं है। इस सूरत में अगर मेरे शौहर और मैं फौत हो गए तो पीछे बच्चों का क्या होगा? क्या मेरे शौहर के भाई इन हालात में इंग्लैंड आकर उन्हें ले जाने के काबिल होंगे? कितना अरसा ऐसा रहेगा? उस वक्त तक बच्चों के साथ क्या होगा? क्या ये यतीम रहेंगे? हमारा जनाजा और गुस्ल कैसे होगा? क्या हमें गुस्ल भी दिया जाएगा? क्या हमें इस्लामी तरीक पर दफन किया जाएगा? बहुत सारे तकलीफ़देह सवालात मेरे दिलो दिमाग को अजियत पहुंचाने लगे। जिस चीज़ ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, वो मेरी बहुत सारी जानने वालियों की तरफ से मेरी मुअय्यन इलामात के बारे में मिलने वाले बाज़ तकलीफ़देह पैगामात थे। एक पैगाम ने मुझे ख़ास तौर पर तकलीफ़ पहुंचाई। एक खातून ने मुझे कहा, परेशान ना हो, ये अल्लाह की मर्ज़ी और गुनाहों का कफ़ारा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर तकलीफ़ जो एक मोमिन को पहुँचती है, हत्ता कि अगर उसे कांटा भी चुभ जाए तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। सही बुखारी। लेकिन ये बंदे और उसके खुदा के दरमियान मामला है। इस बात का कोई जवाज़ नहीं बनता कि एक बीमार शख्स को यह कहा जाए कि यह बीमारी तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। सिर्फ खुदा ही बंदे और खुदा के ताल्लुक को जानता है। इसी तरह मुझे मालूम हुआ कि जमात से मुनहरिफ होने वाले बाज़ लोग मेरे शौहर की बीमारी पर खुश हो रहे थे। मैंने कहा, उन्हें कह दें कि मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि यह बीमारी तुम्हें लाहक हो, लेकिन खुदा हमारी हिफाजत करने वाला है। इसी दौरान मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली। मुझे सैकड़ों नहीं तो दर्जनों पैगामात दुनिया भर से नेक तमन्नाओं और ख़ूबसूरत कलिमात से पुर मौसूल हुए, ख़ास तौर पर अहमदी भाइयों और बहनों की तरफ से। बाज़ ने इब्राहिम के मुतालिक याद दिलाया कि जो नेक काम करते हुए उन्होंने इब्राहिम को देखा था और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को कभी ज़ाया नहीं करेगा। मुझे तसल्ली बख्श पैगामात बच्चों की तरफ से भी मौसूल हुए जो हमें अपनी हर दुआ में याद रखे हुए थे। मैंने फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं लोगों की आवाज़ में गम और दुख नहीं सुनना चाहती थी, और इस वजह से मेरे सीने और फेफड़ों पर दबाव का एहसास पैदा होता था। मैंने सिर्फ़ हुजूर अनवर के दफ्तर के स्टाफ और डॉक्टर साहिबान और अपने शौहर के दो दोस्त जो हस्पताल से राब्ते में थे उनकी फ़ोन कॉल सुनी। एक मुशफिक बाप। अब मैं आपको हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरहिल अज़ीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा ताल्लुक़ मुल्क शाम से है। जंग के बाद मेरे बहन भाई सारी दुनिया में मुंतशिर हो चुके हैं। बहुत साल हो गए मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। मेरे शौहर हॉलैंड में पैदा हुए थे और उनकी सारी फैमिली वहाँ ही रहती है। यूके में हमारे कोई अजीज़ व अकारब नहीं हैं। अगर कोई दूर के रिश्तेदार हैं भी तो उनमें से कोई हमारे बारे में फ़िक्रमंद नहीं होगा, क्योंकि जब हमने अहमदियत कबूल की थी तो उन सब ने हमारा बाइकाट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से हमें ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि हम उन सब बातों का तजर्बा करें जिनसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा को गुज़रना पड़ा। हमारी अजनबियत और तन्हाई की हालत में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसरहिल अज़ीज़ हमारे लिए एक मुशफिक बाप की तरह थे और अभी तक हैं। आप हमारा इस तरह ख्याल रखते हैं जैसे अपने बच्चों का, जो हमारे लिए भी सगे बहन भाइयों जैसे हैं। बेगम साहिबा यानी हुज़ूर अनवर की अहलिया मोहतरमा को मैं अपनी माँ समझती हूँ। दर हकीकत आप मेरी माँ ही नहीं बल्कि एक शफीक दोस्त भी हैं। जब मेरे शौहर अस्पताल में थे तो जो प्यार और मोहब्बत मैंने खुसूसन हुजूर अनवर और हुजूर के बाकी घर वालों से पाई, उसने मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद दिला दी। वो अरबों में एक अजमी थे, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आपके अहल में से हैं। इसी तरह मैंने महसूस किया कि मैं भी हुज़ूर अनवर के अहले बैत में से हूँ। आप हमारे लिए दवाएं भिजवाते, खाने पीने की अशिया तजवीज़ फरमाते और अपने अफराद खाना और दफ्तरी स्टाफ के तवसुत से हमारा हाल अहवाल दरियाफ्त फरमाते रहते। हकीकत सिर्फ ये है कि कलम में सकत नहीं कि हुज़ूर अनवर की शफ़क़तों को अल्फाज में समेट सके। मैं जो कुछ भी लिख लूँ हुज़ूर की पिदराना शफ़क़त और सलूक के साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगी। हम हुज़ूर अनवर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियां खिलाफत पर क़ुरबान हों। आमीन। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला का खुतबा जुम्मा 20 मार्च और आपका कोरोना वायरस से मुतालिक इरशाद जो अल हकम में शाया हुआ, मैं उसको नहीं भूल सकती। हुज़ूर अनवर के अल्फाज मेरे खतूत का जवाब थे और ये मेरे लिए एक शिफा बख्श मरहम थे। मुझे यकीन था कि ये मेरे लिए जवाब हैं, लेकिन इसके बावजूद दो रोज़ से मेरी तसल्ली के लिए हुजूर की तरफ से बराह रास्त कोई पैगाम नहीं मौसूल हुआ था। बस जब मोहतरम मुनीर ओदे साहिब, डायरेक्टर MT इंटरनेशनल, हुजूर अनवर से मुलाकात के लिए हाजिर होने लगे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, क्या आप हुजूर अनवर की खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहती हैं? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन से अर्ज़ करें कि मैं इत्मीनान कल्ब की खातिर आपके अल्फाज की मुंतज़िर हूँ। जब मुनीर ओदे साहिब ने मेरा पैगाम हुजूर अनवर की खिदमत में पेश किया तो हुजूर खामोश रहे, लेकिन मुलाकात के आखिर में हुजूर अनवर ने फरमाया, रीम से कह दो कि यकीन रखे, इब्राहिम को कुछ नहीं होगा, वो सेहत याब हो जाएगा। रहमत इलाही। अब मैं रहमत इलाही का तज़किरा करती हूँ। मैंने दिन रात रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआएं की। मुझे वो हदीस याद थी जिसमें बयान हुआ है कि तीन अफराद जो एक गार में थे और एक पत्थर गिर जाने की वजह से उस गार का मुंह बंद हो गया था, उन्होंने खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया और अपने नेक आमाल याद किए जो उन्होंने महज खुदा की रज़ा की खातिर किए थे, और उन आमाल का वास्ता देकर दुआ की तो पत्थर सिरकता गया और गार का मुंह खुलता गया और वो सब बच गए। इसी तरह मैंने अपने महबूब खुदा के सामने वो काम याद किए जो मैंने और इब्राहिम ने महज उसकी रज़ा के लिए किए थे, और यकीनन वो उन्हें सबसे बेहतर जानता है। मैंने आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं, कुरानी दुआओं और हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं का विर्द भी जारी रखा। तब अल्लाह ने मेरे दिल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उस वक्त की दुआ डाली जब वो सलीब पर लटकाए गए, ऐ अल्लाह इस प्याले को हमसे टाल दे। मैंने इस दुआ को सैकड़ों बार दोहराया जब तक मुझे ये महसूस न हुआ कि जैसे अल्लाह ने प्याला ईसा अलैहिस्सलाम से टाल दिया था, वो इसे हमसे भी दूर कर देगा। एक रात मैंने एक ख्वाब में देखा कि नूरा नामी एक ईसाई नर्स हस्पताल में बड़े प्यार और मोहब्बत से इब्राहिम की देखभाल कर रही है। इसी दौरान उसने उन्हें तबलीग भी करने की कोशिश की। इसके फौरन बाद इब्राहिम को हस्पताल से फारिग कर दिया गया। इब्राहिम ने मुझे बताया कि अल्लाह के फजल से मैंने उसकी सलीब तोड़ दी है, यानी ईसा को सलीब पर चढ़ाने या खुदा होने के उनके तमाम दावों का नाकिस होना साबित कर दिया है। अजीब बात यह है कि हकीकत में वहाँ एक मसीही नर्स आपकी देखभाल कर रही थी जिसके साथ इब्राहिम ने मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक गुफ्तगू की थी। उन्होंने इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत ईसा के असल मुकाम की वजाहत की तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुई और मुतमईन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब दुनिया भर के हज़ारों अहमदी और सबसे बढ़कर हज़रत अमीरुल मोमिनीन हमारे लिए दिली दर्द और मोहब्बत के साथ दुआएं मांग रहे थे। उनमें से बहुत सोने सदका खैरात भी किया। भाई शरीफ औदे साहिब अमीर जमात कबाबीर ने कादियान में बैतु दुआ में खसूसी तौर पर अदा किए जाने वाले नवाफिल में इब्राहिम के लिए दुआ की। मुझे हर जगह से कादियान, रबवा, अमरीका, कैनेडा, अरब ममालिक, यूरोप और बरतानिया से तसली बख्श दुआया पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मैं नॉर्वे में अपनी दोस्त बैरियान को नहीं भूलूंगी। जिस दिन इब्राहिम आईसीयू में दाखिल हुए उसने मुझे मैसेज किया, क्या आप ठीक हैं? मैं दुआ कर रही थी कि अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि मुझे आप और आपके घर वालों के लिए बहुत दुआ करनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे यकीन है कि तूने उसकी तवज्जो सिर्फ इस वजह से इस तरफ फेरी है कि तू उसकी दुआओं को कबूल करना चाहता है। इन सब की वजह से मेरे दिल में रहमत इलाही की उम्मीद और भी बढ़ गई और मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। इसके बाद फिल हकीकत मेरे शौहर की हालत बेहतरी की तरफ मायल होने लगी। वो चार दिन आईसीयू में रहने के बाद आम वार्ड में मुंतकिल हो गए और पाँचवें दिन अल्लाह के फजलो करम से घर वापस आ गए। अब जबकि मैं इस वाक्य के बारे में सोचती हूँ तो देखती हूँ कि इस तजर्बे से हमें कितने फ़वाद और बरकतें हासिल हुई। इसके अलावा मैंने देखा कि ये मेरी दुआओं की कबूलियत का एक मज़हर था। हाँ, अल्लाह ने मेरी दुआओं का जवाब दिया, जैसा कि मैं हमेशा से दुआ करती थी कि ऐ खुदा, कोई ऐसा अमर हमारे शामिल हाल फरमा जो हमें तेरे करीब लाने का बाइस बने। और अब उस ज़ाते करीमा ने इस दुआ को सुना और हमें इन तजर्बात से गुज़ारा। इस तमाम वक्त में जो दीगर फ़वाद हमें हासिल हुए, उनमें ये बात भी शामिल है कि लोगों ने पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे से अपनाइयत का इजहार किया। और हम हदीस की रूह से ये बात जानते हैं कि ये मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत की बदौलत हासिल होती है। इसके अलावा मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मतालिब का सही इदराक हासिल हुआ कि मोमिन बंदों की मिसाल उनकी आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद और शफ़क़त में जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के आज़ा में से किसी एक उज्व को कोई तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को नींद नहीं आती और वो बुखार में मुब्तला हो जाता है। सही मुस्लिम। मुझे तुलुए फ़जर से पहले नमाज तहज्जुद के वक्त भी हर किस्म की तसल्ली और दुआओं के पैगामात मिल रहे थे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया, इन सब हालात का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमें खुदा का मज़ीद क़ुर्ब हासिल करने की तौफीक मिली और खिलाफत और उसके मकाम के मुतालिक हमारा ईमान मज़बूत तर होता चला गया। और इस बात का कामिल इदराक हासिल हुआ कि किस तरह खिलाफत से वाबस्तगी ही इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे लिए हयात जावेदां का मूजिब है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एक छोटे से वायरस ने कि जिसे ज़ाहरी आँखों से भी देखा नहीं जा सकता, दुनिया की अजीमुशान ताकतों को बेबस और मफलूज कर दिया है। आइए हम इस मुश्किल वक्त में अपने ईमानों से फ़ायदा उठाएं, खुदा ताला की तरफ रुजू करें और उसकी रहमत के तलबगार हों कि वो इस वबा से ज़मीन को निजात बख्श दे। आइए हम इस दुनिया को इसके हकीकी खालिक से आगाह करें और बताएं कि अब निजात का इन्हिसार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक आपके मौऊद मसीह अलैहिस्सलाम को मानने में ही है। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना ही है। हमारी वफ़ात चाहे इस वायरस की वजह से हो या कोई और बात इसका बहाना बने, अल्लाह करे कि हम अल्लाह ताला की दरगाह में कबूल किए जाएं। आमीन। तर्जुमा टीम तराजुम अल-फज़ल इंटरनेशनल। ये मज़मून अंग्रेज़ी ज़बान में प्रेस एंड मीडिया ऑफिस की वेबसाइट पर शाया किया गया। अल-फज़ल इंटरनेशनल, 10 अप्रैल 2020। आवाज़ मिसबाहुद्दीन महमूद।